ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನಾಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನಾಯ ಯಮುನಾತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ಯಮುನಾತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಜರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಹೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀಜ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀಜ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡು ರಾಧಾಕುಂಡು ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀಜ ವ್ರಜಭೂಮಿ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಮಥುರಾ ದ್ವಾರಕಾ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಮಾಯಾಪುರ ನವದೀಪ್ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಗಂಗಾ ಮಾಯ ಕೀಜ ಯಮುನಾ ಮಾಯ ಕೀಜ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕೀಜ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀಜ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಕೀಜ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕೀಜ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀಜ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀಜ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇ ನ नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम आज से। नौवा अध्याय है और इस अध्याय का शीर्षक है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। श्लोक नंबर एक और दो में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है गद्य रूप में है तो मैं एक बार उसको उच्चार करूंगा, फिर हम एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करेंगे, फिर हम आगे श्रील प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। अथ कस्यचिद्विजवरस्याङ्गिर्प्रवरस्य शमदमतपा स्वाध्याया ध्यनत्यागसन्तोषतीतिक्षा प्रश्रयविध्यान सुयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्म सदृशश्रुतशीलचाररूपो धार्यागुणा नवसोधर्य अङ्गजा बहुः मिर्तुनं च यवियस्यां भार्यया यस्तु तत्र पुमास्थं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्ट मृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतामहु। श्री शुक उवाच। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अतः तत्पश्चात कस्यचित् किसी द्विजवरस्य ब्राह्मण के अंगीर प्रवरस्य अंगीर गोत्र के शम मन का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, तप तपस्या, स्वाध्याय वैदिक साहित्य का पठन, अध्ययन अध्ययन, त्याग त्याग, संतोष संतोष, तितिक्षा सहिष्णुता, प्रश्रय विनय, विद्या ज्ञान, अनसूया ईर्ष्या रहित, आत्मज्ञान आनंद, आत्म साक्षात्कार में प्रसन्न, युक्तस्य गुण संपन्न, आत्मसदृश तथा अपने ही समान, श्रुत विद्या में, शील चरित्र में, आचार आचरण में, रूप सुंदरता, औदार्य उदारता में, गुणा समस्त गुणों वाला, नवस उधर्या एक ही गर्भ से उत्पन्न, नौ भ्राता नौ सहोदर, अंगजा पुत्र, बभूहु उत्पन्न हुए, मिथुनम जुड़वा भाई तथा बहन, च तथा यवीयस्याम सबसे छोटी, भार्यायाम स्त्री से, यह जो तू लेकिन, तत्र वहाँ पुमान पुरुष, तम उसको परम भागवतम महान भक्त राजऋषि राजऋषि प्रवरम अत्यंत सम्मानित, भरतम महाराज भरत को उत्कृष्ट त्याग कर, मृग शरीरम मृग का शरीर, चरम शरीरेना अंतिम शरीर से विप्रत्वम ब्राह्मणत्व गतम प्राप्य किया आहु, उनका कथन है। His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, अत्यंत विनम्र, पंडित तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसे उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा बाही बहन पैदा हुए, जिसमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज थे। तो ये कथा है उनके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भरत महाराज महान भक्त थे, किंतु उन्हें एक जन्म में सफलता प्राप्त नहीं हुई। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जन्म में भक्ति कार्य पूरे नहीं कर पाता, उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे भगवद्गीतावाद, भगवद्गीता के 6वां अध्याय में 41 श्लोक में इसी का विवरण दिया है। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु अपने आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा करने तथा एक तुच्छ हिरण में अत्याधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का वरदान दिया गया। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान धरते रहे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर दिया गया। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगनारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धूय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नामिने गौरत्विषे नमः। ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಾಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಋಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಾಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮೋ ಹರೇ ರಾಮೋ ರಾಮ ರಾಮೋ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಸೋ ಸಭೀ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೇ ಆಜ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಥಾ ಮೇ. ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಚೇಹರೆ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ನಯೇ ಹೇ. ಯೇ ಕಥಾ ತೋ ರೋಜ್ ಚಲ್ತಿ ರಹತಿ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ ಇತವಾರ ಕಾ ದಿನ ಹೇ ತೋ ಬಹುತ್ ಅತಿಥಿಗಣ ಹೇ ಯಹಾಂ. ಶಾಯದ್ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಥೋಡಾ ಸಾ ಜೋ ಯೇ ಕಥಾ ಕಾ ಸಂದರ್ಭ ಹೇ ಥೋಡಾ ಪರಿಚಿತ ಕರಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಮೇ. ಯೇ ಕಥಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೇ ಪಾಂಚವೇ ಸ್ಕಂದ ಮೇ ಆತಾ ಹೇ. ಯೇ ಕಥಾ ಹೇ ಏಕ ರಾಜಾ ಕಿ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೇ ಭರತ್, ಜೊ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಕೋ ಜೊ ನಾಮ ದಿಯಾ ಗಯಾ ನಾ ಭರತ್ ವರ್ಷ, ಭರತ್ ನಾಮ ಇಸ್ಕಾ ಸ್ರೋತ ಹೇ ಯೇ ರಾಜಾ ಭರತ್ ರಾಜಾ. ತೋ ಯೇ ರಾಜ ಋಷಿ ಥೇ, ರಾಜ ಋಷಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ರಾಜಾ ಹೇ ಬಾಹರ್ ಸೇ ಲೇಕಿನ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಋಷಿ ಥೇ. ತೋ ಸಹಿ ಸಮಯ ಆನೆ ಪರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಅಪ್ನಾ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಸಬ್ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರೋ ಕೆ ಉಪರ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ ಕರ್ ವೋ ಏಕಾಂತ ಮೇ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ತನ್ ಶರೀರ ಸಬ್ಕೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕಾಂತ ಐಸೆ ಜಗ ಏಕಾಂತ. ಏಕಾಂತ ಕ್ಯೂ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಏಕಾಂತ ಜರೂರಿ ಹೇ ನಾ. ಹಾಂ, ಜಬ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಐಸೆ ವಿಷಯ ಆಮ್ನೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹೋತೆ ಹೇ ತೋ ಹಮ್ ಧ್ಯಾನ ನೈ ಲಗಾ ಸಕತೆ. ತೋ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಬ್ ತ್ಯಾಗ ಕಿಯಾ. ರಾಜಾ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಇತನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಹೈ. ಸಂಸಾರ ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ತೋಡನಾ ಇತನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಹೈ. ದರ್ದ ಹೋತಾ ಹೈ ಬಹುತ್ ಅಗರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ ಆಸಕ್ತಿ ರಹತಾ ಹೈ. ಕುಛ್ ಹಮಾರೇ ಚೀಜ್ ಅಗರ್ ಖೋ ಭಿ ಜಾತಾ ಹೈ, ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಭಿ ಗಲ್ತಿ ಸೇ ಕಹಾಂ ರಖಾ ಹೈ ಔರ್ ಭೂಲ್ ಗಯಾ, ಬಹುತ್ ದರ್ದ ಹೋತಾ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಕಿಧರ್ ಹೈ ಕಿಧರ್ ಹೈ, ಕಹಾಂ ಕಿಸೀ ನೇ ಛುರಾಯಾ ತೋ ನಹೀ. ಏಕ್ ಏಕ್ ದರ್ದ ಕಾ ಮೈ ಅನುಭವ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹಮಾರಿ ಆ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಸಚ್ ಹೈ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಸಮಯ ಹಮಾರೆ ಸಬ್ ಆಸಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ಛೀನ್ ಲಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಮ್ ನಹೀ ಚಾಹತೆ ಲೇಕಿನ್ ಛೀನ್ ಲಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಜಬ್ ಹೀ ತೋ. ಲೇಕಿನ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಹಲೆ ಸೇ ಹೀ ತಯಾರ್ ಥೇ, ಐಸಾ ಸಮಯ ಆಯೇಗಾ ತೋ ಪಹಲೆ ನಿಕಲ್ ಗಯೇ. ಲೇಕಿನ್ ಐಸಾ ಹುವಾ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ್ ಘಟನಾ ಹೋ ಗಯೀ ಕಿ ವೋ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾ ರಹೇ ಥೇ. ಏಕ ಹಿರಣ್ ಜೋ ಹೈ ಪಾನಿ ಪೀನೆ ಉಸೀ ಪಾಸ್ ಕೆ ನದಿ ಮೇ ಆಯಿ ಔರ್ ಪೀ ರಹಿ ಥಿ ಉಸ್ಮೇ ವನ್ ಮೇ ಸೇ ಏಕ ಐಸೆ ಸಿಂಹ ಕಾ ಐಸೆ ಗರ್ಜನಾ ಕಾ ಆವಾಜ್ ಹೋ ಗಯಾ. ತೋ ಆವಾಜ್ ಸುನ್ ಕೆ ಇತನಿ ಡರ್ ಗಯೀ ಔರ್ ಸೀದೇ ನದಿ ಕೆ ಉಸ್ ಪಾರ್ ಉಸ್ನೆ ಕೂದಾ. ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಗರ್ಭವತಿ ಥಿ, ಜೈಸೆ ಕೂದಾ ಉಸ್ಕೆ ಪೇಟ್ ಮೇ ಸೇ ವೋ ಬಚ್ಚಾ ಪಾನಿ ಮೇ ಗಿರ್ ಗಯಾ. ಔರ್ ವೋ ಉಸ್ ತರಫ್ ಗಯೀ, ಉಸ್ ತರಫ್ ಘರ್ ಕೆ ದೇಖ್ತಿ ಹೈ ಅಪ್ನಾ ಬಚ್ಚಾ ಪಾನಿ ಮೇ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಹೀ ದರ್ದ ಸೇ ವೋ ಅಪ್ನಾ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ. ತೋ ಯೇ ನಜರ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ನಜರ್ ಮೇ ಆಯಾ. ತೋ ಉನ್ಕೋ ಲಗಾ ಅಭಿ ಅರೆ ಯೇ ತೋ ಬಚ್ಚೇಗಾ ತೋ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಹೈ, ಅಗರ್ ಮೈನೆ ಬಚಾಉಂಗಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ. ಠೀಕ್ ಹೈ ಬಚಾ ತೋ ಲಿಯಾ, ಬಚಾನೆ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಲಾವ್ ಬಾಹರ್ ಲೇಕೆ ಆವ್. ವೋ ವಹಾಂ ಪೆ ನಹೀ ರುಕೆ ವೋ, ಉಸ್ ಬಚ್ಚು ಹಿರಣ್ ಸೇ ಉನ್ಕಾ ಮೋಹ ಹೋ ಗಯಾ. ಇತನಾ ಮೋಹ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಅಗರ್ ವೋ ನಜರ್ ನಹೀ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಹೋತಾ ಅರೆ ಕಹೀ ಶೇರ್ ನೇ ತೋ ನಹೀ ಖಾ ಲಿಯಾ, ಡರ್ ಗಯೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ. ತೋ ಧ್ಯಾನ ವಹಾಂ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಅಪ್ನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. तो इस तरह की आसक्ति से उनके स्मरण में हमेशा हिरण रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवद गीता में कहते हैं, मृत्यु के समय हम जो हमारे स्मरण में रहता है उस तरह का हमारा गति होता है, यानी उस तरह का शरीर मिलता है। अभी आप लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग, जितने भी यहाँ सब बैठे हैं, हम तो सिर्फ इस जीवन का इतिहास जानते हैं हमारा, लेकिन हर एक जो बैठा है यहाँ पे, हम सबका बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन हम भूल गए। ये मत सोचना कि मेरी शुरुआत बस ऐसे घर में जन्म लिया और मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है उतना खाली याद है, लेकिन उसके पहले का याद नहीं है, लेकिन इतिहास है। सब जो भरत महाराज हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ा अनोखा चीज हो गया। अभी हिरण का शरीर लेना है ना, तो अज्ञान का शरीर है ना। एक पशु क्या चाहता है, खाना पीना सोना मैथुन करना बस, लेकिन आत्मा कौन सी थी, भरत महाराज की, बहुत योग तपस्या किया हुआ। तो भगवान के वरदान से हिरण के शरीर में सब कुछ याद आने लगा। और अब सोचिए आप, हिरण के शरीर में और याददाश्त सब है, सब याद है, वेद ज्ञान सब मालूम है, क्या है तपस्या, जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन शरीर मिला है, बहुत पश्चाताप हुआ, अरे ये क्या हो गया, क्या गलती किया उन्होंने, एक हिरण से आसक्ति हुई और आसक्ति के कारण उन्होंने अपना जो कार्य करने के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे, अपने मोह, परिवार से धन संपत्ति आसक्ति सब इतना आसान नहीं है, लेकिन इस स्तर पर आने के बाद एक मोह हिरण सेवा, अब एक स्वाभाविक बच्चा था वो हिरण, बहुत पछताने लगे, लेकिन क्योंकि उनको स्मरण था ये साधारण हिरण नहीं थे, ये साधारण जो जंगल में दिखाई देते हैं ना, जू में दिखाई देते हैं, वो तो बस ये देखता है कि खाने को कहाँ मिल रहा है, कोई भी कुछ दिखाता है तो दौड़ते आता है या बहुत विचलित रहता है उधर इधर डर से। तो ये हिरण बिल्कुल डर एक था, लेकिन उसने सोच लिया कि इस बार मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगा। है हिरण का शरीर, वो अपने फिर से जिस जगह पे जन्म हुआ था उससे दूर चले गए, और ऐसे आश्रम में वहाँ जाकर बस जहाँ पे साधु संत लोग कथा करते हैं वैसे जगह पे जाके, है हिरण हाँ, लेकिन उसके सोच उसके विचार बहुत ही प्रगति किया हुआ एक भक्त की तरह है। तो वहाँ रहने के बाद वो इंतजार कर रहा था हिरण आगे का गति क्या। तो ऐसे इंतजार करते हुए आज का ये पहला श्लोक जो नवे अध्याय में शुरुआत होता है, वही क्षत्रिय भरत हिरण के शरीर में कुछ समय उसके बाद एक ऐसे घर में जन्म लिया। तो उस घर के संस्कार के बारे में बताए हैं, जो उस घर का जो व्यक्ति था ब्राह्मण, उसके गोत्र के बारे में बताया, वो कैसे सुशील था, उसमें सद्गुण थे, सब कुछ एक ऐसे एक वैष्णव में होना चाहिए सब थे, और वहां पे ये जन्म लिया उस घर में। फिर से उस घर में जन्म लेने के बाद भी वो भूला नहीं, लेकिन इस बार उसने ज्यादा चेतावनी लिया, क्योंकि शरीर कौन सा मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी देखा है कि वातावरण तो बहुत ही अनुकूल है, सुबह दोपहर शाम को सब कथा हो रही है, फिर भी उसने सोचा नहीं मुझे इसमें नहीं फंसना है। हम में से कोई सोचेगा ऐसा, हम तो यार अरे अभी तो क्या है, अभी क्या माया की शक्ति क्या है, सोचा नहीं, ये संसार में माया की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि किसी ना किसी तरह से हमें ऐसे फंसा देगी, और वो सोचने लगेगा कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मतलब भगवान को भूल गया। तो मुझे नहीं करना है ऐसे। तो ऐसा व्यवहार करने लगा कि लोग कोई उसके पास नहीं आते थे, ऐसा बहरा गूंगा अनपढ़, यानी कितना वैराग्य होना चाहिए। कोई लोग मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं था, शांत, कोई सवाल का जवाब नहीं दे। क्यों किया ये सब? मुझे फिर से फंसना नहीं, फिर से आके कोई मुझे बोलेगा अरे यार तू कितना अच्छा डिवोटी है, अच्छा ऐसा है क्या, फिर से आसक्ति हो गई और ये सोचने लगेगा, फिर वो बद्ध अवस्था में आ जाएगा। इसलिए एकदम केयरफुल। तो आगे के, लेकिन आज के जो श्लोक हैं उसमें एक ऐसा चीज, एक विशेष विषय हम सब के लिए। हाँ, एक तो सच है, मैंने बताया हम सब का इतिहास है, हम भूल गए हैं, लेकिन अभी हमारी सोच क्या है, हमारी वाचा क्या है, हमारी कार्य क्या है, ये निर्धारित करेगा हमारा भविष्य। मनुष्य शरीर हमें बहुत साधारण लगता है ना, अभी ट्रेन में सुबह सफर करते समय हम किसी को बोलेंगे अरे मनुष्य शरीर बहुत ही क्या बोलते हैं, कितने अनोखे, क्या बोलते हैं, बेवकूफ क्या बात कर रहे हैं, जानवरों की तरह यहाँ पे गर्दी में मैं अटका हुआ और तुम बोलते हैं मनुष्य शरीर कुछ, ये किसने किया, ये हमने ऐसी अवस्था में डाल दिया। लेकिन मनुष्य शरीर मिलना कोई साधारण नहीं है, जितने भी हमारी कुछ समस्याएं होंगी, हर एक का समस्या होगा, बोले यार क्या है मैं फंस गया इधर, दुखी हूं, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये मत बोलना कि मनुष्य शरीर में हो। क्यों? 84 लाख योनि जो होते हैं उसमें ऐसे कई ऐसे योनि हैं, उसकी शक्ति का तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। जैसे हाथी है, हाथी के शक्ति के साथ आप कुछ तुलना कर सकते हैं? आप कितने भी बड़ा हो, मिस्टर यूनिवर्स भी हो, हाथी के सामने क्या है? लेकिन हाथी के सिर्फ स्थूल शक्ति है, उसके सूक्ष्म शक्ति कुछ नहीं है, वो बस अपने कर्म के, कर्म भी नहीं है उसमें, बस एक प्रवृत्ति के अनुसार वो कार्य करता है और उसकी योनि में प्रगति होती जाती है, वो बस जाता है। पशु योनि में पाप नहीं होता है ना, वो लोग प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन मनुष्य शरीर में स्थूल शक्ति नहीं है, लेकिन एक शक्ति है। क्या शक्ति है? वो सूक्ष्म शक्ति है हमारे पास, सूक्ष्म शक्ति से हम सोच सकते हैं। तो आज का विषय है, सोचना ये है कि मैं जो कुछ करूंगा इस जीवन में वो मेरे भविष्य का क्या होने वाले मेरे हाथ, ये शक्ति हम सबके पास है। तो ये बहुत बड़ा एक वरदान है ना, बहुत गंभीर भी है। हाँ, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इसमें, खास करके भोगने की जो एक फैसिलिटी है वो पशुओं से बहुत ऊंचा है हमारा। पशु लोगों को क्या है, हमारे पास बहुत है, साथ साथ में ये भी उत्तरदायित्व है कि कैसे समय का इस्तेमाल करोगे। अरे ये सब किसने देखा है, छोड़ो ऐसे कोई बोलेगे, हाँ कल को किसने देखा है, किसने देखा है मृत्यु के समय क्या होता है, कोई आया है क्या मरने के बाद वापस बोलने के लिए? छोड़ो यार, यही एक जीवन है, जो दिल में आए करो, जो अच्छा लगता है करो, भविष्य को किसने देखा है, ऐसा विचार विचारधारा होती है कि नहीं ऐसी? तो इसलिए डर तो होना चाहिए, अगर डर नहीं है तो मैं अभी कुछ बताऊं आपको तो शायद अब डर जाएगी। अगर हम मृत्यु के समय तैयार नहीं है, यानी तैयारी किया नहीं है, इस शरीर से आसक्ति को अगर हमने थोड़ा सा ढीला नहीं किया है, तो फिर अथर्ववेद में, अभी हम सब लोग मरे हैं, जन्म लिया है, किसी को याद है? लेकिन अथर्ववेद में बताता है, ये कोई साइंटिस्ट लोग कभी नहीं मानेंगे, उनको मालूम ही नहीं कि मृत्यु के समय क्या होता है, वो तो ये पूछेंगे कि प्रूफ क्या है, क्या होता है, वो तो सिर्फ देखते हैं कि आदमी जिंदा था अभी मर गया, लेकिन मरते समय क्या होता है किसी को मालूम है? तो अथर्ववेद में बताया जाता है कि ये जो शरीर तो नाश्वर है, लेकिन आत्मा जो है और उसका शरीर के साथ इतना आसक्ति होता है, लेकिन समय आ गया अभी अलग होने का। हर एक के साथ होगा ना, इतना दर्दनाक होता है। हम सब ने दर्द का तो अनुभव किया है ना। ऐसे कहा जाता है कि 40,000 स्कॉर्पियन, अब हिंदी में क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन, अभी हमें से कितने लोगों को बिच्छू ने काटा है किसी को मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है। 40,000 याद रखना, ये अगर हमने तैयारी नहीं किया है, मृत्यु तो सबको सामना करना है। अभी डराने का, ये कोई डराने की बात नहीं है, सत्य को बोल रहे हैं। तो डर भी जरूरी है, डर अगर है तो हम उस तरह से हम व्यवहार करेंगे। डर होना अच्छा नहीं है। एग्जाम आ रहा है, ये डर अच्छा है कि बुरा है? कॉलेज में जब हैं हम, अरे 2 महीने में एग्जाम है, थोड़ा टेंशन में हूँ, तो टेंशन अच्छा है कि बुरा है? नहीं तो फिर हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे। तो उसी तरह से शास्त्र हमारे लिए एक बताता है कि इस दर्द में 4 तरह के दर्द होते हैं, या अथर्ववेद में लिख। पहला दर्द है विश्लेष दुख। विश्लेष दुख का अर्थ है आत्मा इस शरीर से अलग होता है, इतने समय से वो आसक्त है, लेकिन अलग होना आता है तो बहुत दर्द होता है। वो एक अलग दर्द है, जो अनुभव किया उनको ही मालूम है, बहुत दर्द होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे समय पे हालत कैसे होती है, आपको लगे ये सब अशुभ बात कर रहे हैं यार, कुछ अच्छी बात करो। ये अशुभ नहीं है, ये सत्य है। तो सत्य को बोलने में कुछ हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं विश्लेष दुख। हाँ, जैसे बहुत ही ऐसा चिपका हुआ है और उससे उसको अलग करना है। अलग करना है तो ऐसे आसानी से अलग नहीं होता है, एक खींच के अलग होना पड़ता है, पकड़ के रखा है तो दर्द होता है। तो यह है विश्लेष दुख। दूसरा दुख है, उसको कहते हैं महादुख। महादुख का अर्थ है जो कुछ इस शरीर से संबंधित बहुत सारी आसक्तियां हैं उसको भी छोड़ना पड़ता है। तैयार नहीं है तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, तो वो भी एक दुख है, तो उसको कहते हैं महादुख। काफी नहीं है ना, तीसरा एक दुख, इसको कहते हैं अनुताप दुख। अनुताप दुख का अर्थ मालूम है? पश्चाताप। जैसे ये पश्चाताप तो ठीक है, लेकिन हमारी पश्चाताप अगर तैयार नहीं है तो बहुत लेट है, बहुत लेट हो गया अभी, लेकिन पश्चाताप आएगा, अरे क्या किया मैंने, तभी याद आ जाएगी, अरे क्या किया है, कैसा मौका था। हाँ, कितने ऐसे लोगों ने, मेरे मित्र ने एक बार कहा था, हाँ टाइम पास मत करो, थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट लो। अरे मैंने सुना ही नहीं उसकी बात। हाँ, उसने बोला भगवद गीता थोड़ा पढ़ो, भक्तों का संग करो। मैंने मजाक किया उसका, अरे अरे अरे। और उसके साथ साथ ये भी याद आता है कि मैंने कितने लोगों को मैंने हिंसा किया है, कितने लोगों को मैंने झूठ बोला है, कितने लोगों को मैंने फंसाया, मैंने ऐसे पाप कार्य किए हैं। पश्चाताप होता है, अरे अरे अरे। लेकिन अभी क्या समय, तो अभी कितने हो गए दुख। अभी चौथा दुख है भयानक दर्शन दुख। नाम से पता चलता है ना, तो जो कुछ किया है हमने उसका एक झलक दिखाई देता है कि आगे कहाँ जा रहे हो तुम। यही नहीं, यमदूत अपना दर्शन देते हैं, चलो आ गया मैं, अरे अरे मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन अभी समय, टाइम अप। वो इतना भयानक होता है उनका दर्शन। आप पूछे अरे इसका प्रूफ क्या है, तो एक मैं आपको प्रूफ देता हूं, सच्ची घटना है। हमारे संस्था में शुरुआत में जो प्रचार होता था, बहुत सारे भक्त भगवान प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ गए, उसमें कई लोग आर्टिस्ट थे। तो एक ऐसा आर्टिस्ट था, वो अपने पिता के साथ घर में रहता था, वो पिता को बताता था कि ऐसे ऐसे नहीं है, फिर वो चित्र बनाता था। तो उसने भक्तों के संग में भागवत कथा सब सुनकर यमदूत का क्या रूप होता है उसने चित्र बनाया था। तो उसके पिताजी ने देखकर उन्हें मजाक किया था, ये सब क्या है बकवास, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कहाँ इन लोगों के साथ फंस गए। और एक बार एक समय सबकी तरह उनका भी मृत्यु का समय आया, तो उस समय वो तो तैयार नहीं थे, तो बहुत डर गए और बोलने लगे, अरे वो दिख रहे हैं मुझे, आ गए आ गए। तो लड़के ने पूछा, कौन? अरे वही वही कौन, वो जो तुमने चित्र किया था ना वो। तो अरे उसको तो बेटा एकदम चकित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पिता को तो विश्वास ही नहीं है इसमें सब। तो ऐसा ये सिर्फ हमारे दिखाने के लिए कि ये कोई ऐसी नहीं है कि अरे किसने देखा है। इसलिए शास्त्र पे श्रद्धा होना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है कोई साधारण मनुष्य ने लिखा हुआ नहीं है, ये ऐसे महान भगवान की वाणी ऐसे भक्तों के हृदय में साक्षात्कार होता है और वो लोग उसे लिखते हैं, वो हमें तो उसमें कुछ रिसर्च नहीं होता, अरे ये क्या लिखे, तो मेरे समझ के बाहर है, तुम्हारे समझ के बाहर है, लेकिन ये सच है। तो ऐसे भयानक, तो उस भयानक में अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे दूसरे हमें प्रेरणीय करने वाले विषय है, उसको उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय ऐसा है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि इतने कृपालु और इतना प्रेम करते हैं हमारे से, अगर हमने कुछ भी थोड़ा भी किया है उनको स्मरण करते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं, वो बोलते हैं अरे ठीक है जो भी है कुछ तो किया है, इसको मैं फिर से मैं सही रास्ते पे ले आऊंगा मैं। तो इससे हमें बहुत खुश होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कुछ किया है, थोड़ा सा भी किस रास्ते पे किया, उस गति पे किया है कि भगवान के बारे, अगर कोई मंदिर आया है और एक दिन प्रणाम किया है और माथा टेका है और भगवान से, भगवान अगर कुछ उसने अपने दिल से एक ऐसा प्रार्थना किया है कि मैं चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मुझे कुछ मदद कीजिए, हाँ इसने सुन लिया, ये मदद चाहता है मेरी, वो कभी नहीं भूलेगी। तो इसलिए प्रार्थना करते समय अगर पूरी तरह से दिल से आपने प्रार्थना किया है, सच्चे समझ कर क्या चाहते हैं जीवन, कभी नहीं भूलेगी, हमेशा के लिए उनके उसमें रहेगा, वो किस तरह से हमें याद दिलाएंगे, कैसे रास्ते में फिर लाएंगे, और उनके और उस जीव के बीच में, उसमें हमें किसी को नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन उनके रजिस्टर में सब कुछ परफेक्टली क्लियरली लिखा है, तो हमें नहीं मालूम। तो इस तरह तो ये चार दुख सिर्फ ये बताने के लिए कि तैयारी नहीं है, तो हम तो नहीं चाहते, हम में से कोई भी नहीं चाहते कि उस अवस्था में रहे, सच है ना। हम चाहते हैं कि किस तरह से हम उस दिन के लिए तैयार रहें। तो ये भगवद गीता में आज ये विषय आता है, अगर इसको अगर हम सही तरह से समझेंगे तो फिर हमारा जीवन, भय तो रहना चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे संस्था में कई बार ऐसे मजाक से बोलते हैं, माया दास उदास, कृष्ण दास भिन्दास। क्यों भिन्दास? उसको मालूम है, अरे आने दो यार, मैं तैयार हूं, क्या होगा, जरूर मेरी रक्षा के लिए भगवान ने कहा है मैं रहूंगा मैं। लेकिन अगर हम सिर्फ माया के दास ही बनते रहेंगे तो फिर उदास ही उदास और भयानक दर्शन। सिर्फ ये इतना तो याद रखना है कि बस, कि ये जो मनुष्य शरीर का जो सही, हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ पर विशेषकर तात्पर्य में एक श्लोक भगवद गीता का उल्लेख करते हैं इस संबंधित। वो श्लोक में ऐसा बताया गया है, अर्जुन सवाल करते हैं, ये भगवद गीता के 6वें अध्याय में आता है, अर्जुन पूछते हैं, जैसे अभी हमने तो भरत महाराज की कथा सुना ना, किसी कारण उसने अपना तपस्या छोड़ दिया उन्होंने, तो अर्जुन ने सवाल किया, हे भगवान अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पूरी तरह से प्रयास करता है, उसने संसार के सुख को त्याग किया, किसी कारण वो कुछ ऐसे माया शक्ति के प्रभाव में आकर अपना तपस्या को छोड़ देता है, तो उसकी गति क्या होगी? भौतिक संसार का सुख तो छोड़ दिया उसने, और जो गति है आगे का, वहां तक तो पहुंचा नहीं वो, बहुत ही ये विषय है ना। तो इसका जवाब क्या? तो उसके जवाब में भगवान हम सबको आश्वासन दे रहे हैं तो अभी आप खुश हो जाइए, हाँ, और डर को जब साइड में रख दीजिए। हाँ, थोड़ा डरावना था वो डर, लेकिन वो भी शास्त्र में लिखा है और ये भी शास्त्र में लिखा है। तो ये मैं श्लोक आपको उच्चार करूंगा और उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ समय है अपने पास, कहाँ गए हमारे भगवद गीता, हे सिक्स। देखो आज का श्लोक में हमने क्या पढ़ा तात्पर्य में, कि हिरण के शरीर त्याग करने के बाद कहाँ पे जन्म लिया उन्होंने, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और पैदाइशी उसको एक अवसर मिला। तो जब अर्जुन ने ये सवाल किया ऐसे क्या होता है, हाँ, भगवान पहले श्लोक में यानी 6वां अध्याय 40 श्लोक में बताते हैं, अर्जुन मेरे जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी भी ऐसे पतन नहीं होता। थोड़ा सा दिशा बदल भी जाया गए, लेकिन फिर ये जो श्लोक है उसमें वो बताते हैं जो आज प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लिया है, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। इस श्लोक अनुवाद है अर्जुन के प्रश्न का, सवाल का जवाब। भगवान कहते हैं जो इस योग मार्ग में समझो बहुत ही ज्यादा उसने प्रगति किया है और कुछ लोगों ने कम मात्रा में प्रगति किया है, दोनों का समझो किसी कारण थोड़ा सा दिशा बदल जाती है तो उसकी गति क्या होती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि एक तो है समझो कुछ इच्छाएं आ गई उसको भोग करने की, तो उसको ले जाते हैं ऊपर स्वर्ग लोक में और कहीं ऐसे सालों तक वहां पे वो रहता है, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आता है, क्योंकि उसका कैंसल नहीं हुआ है जो कुछ उसने इन्वेस्ट किया है, वो फिर वो आता है और ऐसे जगह पे जन्म लेता है जैसे भरत महाराज ने लिया था, एक बहुत ही ऐसे सुसंस्कृत घर में, ब्राह्मणों के घर में, जहाँ पे आध्यात्मिक कार्य चलते रहता है, या तो फिर ऐसे बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है। हाँ, तो इसलिए अगर जब अमीर लोगों को देखते हैं तो आपको ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अरे होगा कुछ, इसने कुछ किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने का मतलब है कि हाथ पैर हिला के लूटो ये करके, जो अमीर बनता है उसका भी कुछ तो कारण होता है, जहाँ पे जन्म लेता है तो उसके कर्म से उसको मिल रहा है, लेकिन अगर उस फैसिलिटी का वो फायदा नहीं ले रहा है तो फिर हमें दया होना चाहिए, अरे यार फंस गया है। तो यहाँ बताया है कि स्वर्ग जाता है, अभी आप बोलेंगे अरे स्वर्ग, हमको तो स्वर्ग नहीं जाना है, हम तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं तुम्हारी इच्छा है ना तो जाओ, और ये कोई साधारण स्वर्ग नहीं है, पुण्य कृताम लोकन यानी ऐसा उधर सुख है कि वो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन ये याद रखना आज के जो युग में जो हो रहा है इतना आसान नहीं है कोई स्वर्ग जाना, बहुत आसानी से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कितने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ ये सब तपस्या करने के बाद अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। तो जब प्रभुपाद यहाँ इस दुनिया में जब प्रचार कर रहे थे, जब पहली बार ऐसा घोषणा होगा कि चंद्रमा में लोग गए हैं, मैन हैज लैंडेड इन मून, तो प्रभुपाद को बताने के लिए टीवी लाके सामने रखा गया और वो टीवी में दिखाया गया, आप लोग को शायद मालूम नहीं, वो कैसे ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉट ऐसे ऐसे चल रहे हैं और प्रभुपाद को उनका एक डिसाइपल था शिष्य वो मालिश कर रहे हैं, प्रभुपाद मनुष्य चंद्रमा पर गया। प्रभुपाद ने कहा चंद्रमा भी एक स्वर्गलोक की तरह, चंद्रलोक है, वहां पे ऐसे शरीर में तुम जा ही नहीं सकते, ऐसे शरीर यानी रॉकेट सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट जा ही नहीं सकते। तो ये जो था ये बहुत विचलित हो गया, प्रभुपाद यार क्या बता रहे, टीवी में दिखाई दे रहा है, देखो। तो उसकी श्रद्धा टूट गई और वो निकल गया, प्रभुपाद की सेवा कर रहा था और उसको अच्छा नहीं लगा। तो प्रभुपाद के पास जाके लोगों ने बताया, प्रभुपाद वो चला गया। तो प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरे पर क्यों विश्वास कर रहा है वो? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के ऊपर विश्वास करो। शास्त्र में लिखा है कि चंद्रलोक में कोई ऐसे जा नहीं सकता, आपको इस शरीर को त्याग कर अपने पुण्य से आप, बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल केस होता है, किसी को याद है जो यही शरीर में गया है महाभारत में? अर्जुन, अर्जुन की तो है ना, अर्जुन क्या अपने पिता के समीप में जाके बैठ गया यही शरीर में, वो बात अलग है, उर्वशी आई वो तो वो घटना, लेकिन ऐसे बहुत ही कम है जहां पे यही शरीर में जाकर फिर वो वापस आया है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता। तो ये व्यक्ति छोड़कर चला गया। तो कहने का बात यह है कि भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वर्ग बनाया, जो कम किया है तो वो फिर से इस तरह था, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा किया है, एकदम नजदीक तक गया है, बहुत किया, 95% या 90% पहुंच गया है, उसकी क्या गति होती है? किसी कारण वो थोड़ा फिसल गया, तो उसके लिए दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अथावा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतादि दुर्लभाताराम लोक जन्म यदि दृशम। वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां पे सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कोई बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण, लेकिन ऐसे घर में जहां लोग भगवान के प्रेम मही सेवा करते हैं, यानी शुद्ध एक वैष्णव के घर में जन्म लेता। सो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहे हैं, तो मैं और मेरे गुरु, प्रभुपाद के गुरु कौन है? तो बोलते हैं, हम लोग दोनों एक ऐसे घर में जन्म लिया जहां पे हमें बचपन से ही ये मौका मिला। हम सब जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऑफकोर्स वो कोई साधारण जीव नहीं है तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार में दिखाने के लिए कि शुरुआत से जब मौका मिलता है, खास करके बच्चों को, सबको जरूरी है मौका, सत्संग की सबको जरूरत है, बिना सत्संग हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो ये जो इतवार का प्रोग्राम है, आइए सत्संग कीजिए, प्रभुपाद की कृपा है कि हमारे जीवन के कितने सारे ऐसे विचारधाराएं हैं जो हमें माया के इस दिशा से अलग करता है, सुनिए और अपने जीवन को सार्थक करिए, ये सत्संग है, ये सबको चाहिए। लेकिन विशेषकर जब बच्चे ऐसे घर में जन्म होते हैं तो लोग बहुत विशेष होते हैं। तो यहां बताया गया कि शायद कोई योगी होगा तो उसने कुछ कारण, तो वो सीधा ऐसे घर में जन्म लेता है, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि आपको सब मालूम है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो एक जज थे एक, लेकिन वो क्या कहते थे, जब मैं घर में आता हूँ शाम को तो मेरा घर वैकुंठ लग रहा है। अरे घर तो घर है यार, गए वैकुंठ कैसे लगेगा, वैकुंठ तो और कहीं है। तो मैं देखता हूँ कि हर एक परिवार के सदस्य कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई भगवान को भोग बना रहा है, कोई मंत्र उच्चार कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है, कोई प्रेम से वो प्रवेश कर रहे, देख रहे, अरे वाह क्या घर है। तो ऐसे घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ। तो उसमें से एक घटना है कि वो तो मैजिस्ट्रेट जो भी थे उस समय ब्रिटिश राज्य में, तो उनका घर जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास ही में था। जब छोटा बच्चा था, 6 महीना भी नहीं था उसका, तो माँ ने, रथ रुक गया घर के सामने, तो माँ को लगा चलो कुछ आशीर्वाद लेते हैं, तो ऊपर चढ़कर गए, हाँ, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे और मंदिर के भी बहुत ही बड़े अधिकारी थे भक्ति विनोद ठाकुर, अरे उनका बच्चा है। तो पांडा लोगों ने बोला यस आप जाइए, तो जाकर अपने बच्चे को आशीर्वाद के लिए जगन्नाथ जी के चरण पे रखा, तो तप करके एक फूल गिरा। ये सब बताने के लिए कि ये लड़का आगे तो इतिहास जानता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन दिनों में ब्रिटिश राज्य के समय क्या किया है उन्होंने। हाँ, कोई भय नहीं था उनको, 64 ऐसे मठ बनाए उन्होंने। और वही हमारे प्रभुपाद, वो अपने बारे में बता रहे प्रभुपाद कि मेरे भी घर में मेरे जो पिता थे, हर दिन 4 साधु लोग आते थे हमारे घर में, हर एक 4 साधुओं का भोजन होता, और उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, साधु लोग आशीर्वाद देते तो आप और कुछ आशीर्वाद मत दीजिए, बस मेरे बेटे को राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ ऐसे भक्त बनाइए। ये मोहन देव अभय चरण देव के पिता का था बच्चा, ऐसा नहीं कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा, माँ चाहती थी, माँ ने कहा कि मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा, इंग्लैंड जाएगा, उन दिनों में इंग्लैंड जाना आसान था अगर है तो। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये इंग्लैंड नहीं जाएगा, ये उधर जाएगा तो दूर संघ में पड़ जाएगा और हमारी क्या गति होती थी अगर यहीं रह जाते तो। तो प्रभुपाद वहाँ गए ने आचार्य बन गए, उसके बाद गए। हाँ, तो जब उन्होंने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा प्रभुपाद से, अरे आप हमारा तो देश, तो आप यहाँ क्यों आए, इंडिया को तो गरीब देश माना जाता था। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, मैं आप लोगों को वो देने आया हूँ जो आप भूल गए हैं, आप लोगों ने बहुत सा लूटा हमें, लेकिन एक चीज़ आप भूल के गए तो वह मैं वापस देने आया हूँ आपको, आपने ये नहीं लेके गया, ये ले लो। ऐसे प्रभुपाद बाद में गए इंग्लैंड, लेकिन माँ चाहती थी कि बैरिस्टर बने। तो इस तरह से ये जो कथा चल रही है भरत महाराज की, कि हम समझे कि हमारी इतिहास लंबी है और हमारा जो सूक्ष्म शक्ति है बहुत तीव्र है हर एक का, इसलिए हम पशुओं से अलग हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको और तीव्र बनाना है तो ऐसे लोगों के संग में आना पड़ता है जो लोग इसी तरह के कार्य करते हैं, इसका अर्थ साधु संघ, तो तभी हमारी विचारधारा बदलती। तो इस हालत में निश्चित भय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सब सुनने के बाद हमारे जीवन के बारे में एक भय होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन आगे क्या होगा, मेरे हाथ में जो कुछ मेरे विचार होंगे, सोच होगी, वाणी होगी, कार्य होगी, लेकिन बोलना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत तीव्र है, विशेषकर आधुनिक। हाँ, जो एक इंग्लिश में कहा है कहावत, एक कहावत ने एक बड़े ऐसे एक फिलोसोफर ने एक स्टेटमेंट दिया है, मार्टिन लूथर किंग बोल के, उन्होंने कहा है कि हमारे पास वी हैव गाइडेड मिसाइल्स फॉर मास डिस्ट्रैक्शन, गाइडेड मिसाइल्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन एक लाइन उन्होंने, लेकिन आज हमारे पास मास डिस्ट्रैक्शन के लिए, जैसे वो प्रभुपाद के प्रभु जी के हाथ में है ना, जो मास डिस्ट्रैक्शन के लिए मिसगाइड करने के लिए बहुत बड़ा एक डिवाइस है ना प्रभु, जरा आप ऊपर कीजिए। सो ये मिसाइल नहीं है, लेकिन ये मिसाइल से भी ज्यादा शक्ति, मिसाइल से क्या होगा, आदमी का शरीर का नाश होगा, लेकिन ये ऐसा मिसाइल है हमारे सब ऐसे विचारों को, ऐसे आसक्तियों को, ऐसे विषयों पर लगा देगा, तो इसकी ज़रूरत इस्तेमाल होता है, करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि यही एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें इस मार्ग से अलग कर सकता है। तो संक्षेप में आज के इस कथा में हमने भरत महाराज ने अभी जन्म लिया है, अगर इसके आगे उन्होंने क्या किया है ये सब आपको सुनना है तो फिर आना पड़ेगा, लेकिन ये कथा चलती रहेगी, फिर भी निराश मत हो जाइए, श्रीमद् भागवतम हर एक भाषा में उपलब्ध हैं, जो इच्छा है, इच्छुक हैं कि मुझे ये विषय को और ज़्यादा पढ़ना है तो इंग्लिश में है, मराठी में है, हिंदी में है, तो इस तरह से आगे कथा बहुत रोमांचक है कि हमारे जड़ भरत जो उनका नाम है, उन्होंने एक 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 उनका एक गुण है, बहुत सारे गुण हैं, उसमें से एक गुण ये था कि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो आज के दिन हम कम से कम वो एक सीखेंगे, अगर बोलना है तो कुछ अच्छा बोलिए, नहीं बोलना है तो चुप बैठिए, कुछ बोलिए मत, क्योंकि कुछ बकवास बोलने से, जिसको प्रजल्प कहते हैं, कुछ ऐसे ही, अरे उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, हमें शास्त्र कहते हैं कि ऐसे बोलने से हमारी आयु कम होते जाती है। ये बगैर ऐसे के क्या बोलने से आयु कैसे कम हो गया, बोलते आयु कम इसलिए होती है कि हम ऐसे विषयों को आकर्षित करते हैं जिससे हमारी गति मृत्यु के तरफ तेजी से जाती है, और उसके बाद मृत्यु के बारे में आपने तो सुन लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत ही ध्यान से सुना है, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उसके उसमें कुछ अच्छा कुछ सुना है आपने, तो उसको अपने जीवन में निश्चित उतार लेना, कुछ अगर कड़वा लगा तो सच्ची कभी कभी कड़वी होती है, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा कुछ मत नहीं है, शास्त्र में लिखा है और आज का संदर्भ ऐसा था इसलिए मैंने थोड़ा विषय को बता दिया। डर होना अच्छा है, डर कोई बुरी बात नहीं, डर से आदमी बच सकता है गलत काम से, है ना, अगर पुलिस का डर नहीं हो तो क्या करेगा व्यक्ति, है ना, तो पुलिस और गवर्नमेंट के नियमों का डर तो होना चाहिए, पकड़े जाओगे तो डर अच्छा है कि बुरा है। तो उसी तरह से ये कोई पुलिस लॉ नहीं है, ये कौन सा लॉ है, प्रकृति का लॉ है, इसके इसमें आप कुछ रिश्वत नहीं दिखा सकते, आप रिश्वत भी को नहीं दिखा सकते, अरे अरे चलो यार इसको किसे में डाल देता हूँ मैं, कौन खरीद नहीं सकता है, पुलिस को तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों को कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, करोड़ों का पैसा खरीद सकता है नहीं, जैसे हम पर असर करता है वैसे ही करोड़पति है उसके ऊपर असर करता है, लेकिन हमारी सूक्ष्म शक्ति से हम इस बंधन से मुक्त होकर सच्चा सुख का अनुभव कर सकते हैं, जो भगवान हमारे लिए दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं, आ जाओ मैं हूं मेरी ओर देखो, ऐसे खड़े हैं सालों से, तो हमारे ऊपर है, हम उनके सामने आकर क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न है तो मुझे एक प्रश्न लेते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें महाराज भरत के बारे में बताया, लेकिन प्रश्न इस तरह से है प्रभु जी के, इतनी आध्यात्मिक प्रगत होने के बावजूद वो जो उनकी भावना चेतना थी, तो प्रश्न ये होता है कि अगर हिरण का बच्चा असहाय था और उसको मदद करना तो ये स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, तो और बाकी आसक्ति उनके प्रति जो हुई उनकी, तो इसको कैसे हम मर्यादित करें कि एक होती है मदद और एक होती है आसक्ति, तो ये इसका भेद या तो एक जो बाउंड्री है एक उसको कैसे निश्चित करें हम।
तो प्रभु जी का सवाल ये है कि भरत महाराज इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी ऐसा कैसे हुआ ना? हाँ स्वाभाविक है, हिरण से दया तो होता है, वैष्णव तो हाँ है ना, परा दुख का दुखी होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसमें थोड़ा सा गलती ये हुआ कि उनकी आसक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वो अपना जो कार्य करना है वो कार्य को उन्होंने उपेक्षा किया, ऐसे प्रभुपाद बता रहे। तो हो सकता है कि ये जो आवरण, ये जो शक्ति है इतना तीव्र होता है कि पता ही नहीं चलता है कि उनको नहीं चला, ये विषय थोड़ा भरत महाराज कोई साधारण नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे लिए हमें सोचना चाहिए कि हम अगर अकेले में भक्ति करना चाहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं हम बेवकूफ हैं, कोई समझता है मैं एकांत में जाऊंगा और मैं माला जप करूंगा, मुझे मालूम है ऐसा बताया गया कि भगवान का नाम जाप करने से पूरा शुद्धिकरण होती है, सच है, लेकिन एकांत में जाओगे और मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो कहीं भी ऐसे विषयों से, तो इसके लिए एक कि संग में रहना। प्रभुपाद के एक ऐसे शिष्य थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि ये शिष्य संग नहीं कर रहा है, अलग से कर रहा है, उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, ये कौन है प्रभुपाद, उसने ऐसा निर्णय लिया कि अभी वो अकेले में जाकर कुछ ऐसा 190 कुछ माला मैं करने वाला हूं। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, जस ऐसे मुस्कुराया। एक दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, अरे बोलो प्रभुपाद कर रहा है बहुत अच्छा। फिर कुछ समय के बाद, अरे वो कहाँ है? बोले मालूम नहीं कहाँ है, मालूम नहीं किधर गया। तो कई सालों के बाद पता चला, अभी हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं और हमारा है ही नहीं अपना राइट, हर एक अपना अपना भगवान, लेकिन हमारे लिए एक सीख के अलग से हम कर नहीं सकते हैं। भक्तों के संग में कभी कभी अलग से एकांत में बैठ सकते हैं, लेकिन तो कोई भक्तों ने उनको अमेरिका में फिर मिले, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ी में, अरे तो क्या कर रहे इधर, महाराज मेरा जब करता है कि नहीं, अरे इस जीवन में जितना करना था मैं तभी कर रहा था, मैंने अभी मुझे करने की जरूरत नहीं। तो एक ऐसे ही, हाँ तो अलग से हम ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो नहीं होगा। तो आपका सवाल का जवाब बस इतना ही है कि भक्तों में संग में अगर अच्छा सा मित्रता है तो मित्र होने के नाते वो हमेशा है ना, मित्र जो होता है अपना हितचिंतक होता है ना, वो तो अगर तुम थोड़ा सा भी अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, बच गए ना, लेकिन बोलने वाला कोई है ही नहीं क्या कर रहे हो, तो अपना मन बोलता है कि अरे मैं सही कर रहा हूँ, अरे हिरन है, ऐसा जो भी है। तो इस तरह से भक्तों के संग में थोड़ा हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, चलो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके,
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल, आई कुड फील योर रियलाइजेशन, जो आपने लाइफ अपने बिताई है भक्ति में, तो आपने वो पूरा उसको व्यक्त किया कि कैसे एक भक्त का जीवन हो सकता है। जैसे हम लोग स्ट्रगलिंग साधका हैं, तो आई जस्ट वांटेड योर गाइडेंस कि जब हम कार्य में रहते हैं तो हम लोग भी बहुत अटैच रहते हैं अपने कार्यों से या फैमिली से या बहुत सारी चीज़ों से, तो वो जब हमारी भक्ति के ऊपर टोल लेता है, व्हेन वी आर लाइक वर्शिपिंग ऑल्सो और चैंटिंग ऑल्सो, बट द थॉट्स कम ऑफ ऑफिस और फैमिली और सो मेनी थिंग्स, सो हाउ कैन वी सेव अवर भक्ति, सो द भक्ति इज नॉट हैम्पर्ड एट ड्यूरिंग ऑल दोज टाइम्स।
सो प्रभु जी का सवाल ये है कि मैं एक गृहस्थ हूँ तो निश्चित मेरे परिवार के लिए सब लोग प्रिय हैं, पति बच्चे घर रिश्तेदार मित्र, तो कभी कभी मेरे भक्ति के इसमें ऐसे विचार, वो विचार आते हैं, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है विचार। अगर परिवार के कुछ लोगों को कुछ चोट पहुँचता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारी आसक्ति है, प्रेम भी है, तो ये क्या है भक्ति के लिए, तो इसलिए ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसक्ति है मालूम, सो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत आसान कर दी। हम आसक्ति को अपने आप नहीं तोड़ सकते, कोई नहीं तोड़ सकता, आसक्ति है तो क्या करना क्या है, हमारी आसक्ति को ऐसे विषयों पे बनाना और तीव्र करना, परम दृष्टवा निवर्तते, बस टेस्ट हमारा इधर बढ़ गया, अपने आप ये आसक्ति कम होगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी आप अपने परिवार के कार्य में लापरवाही करेंगे, अरे अभी मेरा तो आसक्ति होगी, अभी मैं ये सब ये मोह माया है, वो बेवकूफ़ी है। आप अपने आसक्ति को बढ़ाइए, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सब वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी थोड़ी टेस्ट बढ़ जाए, भगवान के नाम में टेस्ट बढ़ जाए हर बार करते समय, और दूसरा भगवान देख ले, उनके ऊपर छोड़ दो, वो सब ये मत करो ये है। मुझे एक बार याद है किसी एक भक्त ने शुरुआत में बहुत ही उत्साह से प्रश्न किया परम पूज्य राधानाथ महाराज से, ज़्यादा समय नहीं हुआ था आखिर कुछ ऐसे हुआ तो उसको लगा अरे ऐसा है क्या, तो महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आसक्ति किस चीज़ों में है, मैं जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसे कट कर। तो महाराज थोड़ा मुस्कुराए, प्रिय भक्त समय बताएगा तुम्हें। हाँ तो इतना आसान नहीं है कि हम उत्साह से हो कि अरे मेरी ये आसक्ति है मैं, नहीं
सोचो ही मत उस बारे में, थोड़ा मान लेंगे बस, उसमें ज्यादा टेंशन मत लो, आसक्ति बढ़ाओ यहाँ पे बस। ओके ठीक है प्रभु, हाँ
थैंक यू सो मच।
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, हरे कृष्ण। इसके बाद तो इसके बाद आज कुछ घोषणाएं हैं प्रभु। 10:30 बजे कीर्तन होगा, ये हमारे हर इतवार का कार्यक्रम है, और 11 से 12 एक हिंदी में फिर से प्रवचन होगा, 12 बजे आरती होगी, और सब लोग इस आरती में ज़रूर भाग लीजिए, कीर्तन होगा, और उसके बाद ललिता भवन में सभी के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद होगा, निशुल्क प्रसाद। ये हमारी अन्न क्षेत्र की तरफ से हर दिन दोपहर को यहाँ पे प्रसाद बढ़ता है। आप सभी का स्वागत है, हरे कृष्णा।